आरफ कबीर के साथ मुंबई जा रहा था क्योंकि उसके लिए कुछ ऐसे सबूत इकट्ठा करने जरूरी थे जो माहिरा को हराने में उसके काम आ सकते थे। आयु पहले आरफ के साथ जाने की जिद कर रही थी, लेकिन आरफ के समझाने पर वो मान गई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर पूरी फैमिली नाश्ता कर रही थी। इस बीच आयु अपना मोबाइल लेने ऊपर गई हुई थी। बातों बातों में आरव ने उन सबको बताया कि जब आयु की मौत हुई थी तब उसे ट्विन्स पैदा होने वाले थे, और ये सुनकर उन सबको झटका सा लगा। वहीं सीढ़ियों से नीचे आ रही आयु ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसे कुछ याद नहीं था, लेकिन फिर भी वो उस दर्द को महसूस कर पा रही थी। उसने आर्य के मोबाइल में उस दिन पार्टी की फ़ोटोज़ भी देखी थी जब वो और आरव साथ में डांस कर रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर खुशी थी। आयु ने अपने सीने पर हाथ रखा और सुबकते हुए अपने मन में कहा, कुछ भी याद नहीं है, फिर भी इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? मेरी पिछली लाइफ इतनी ज़्यादा बुरी थी क्या? तभी आरफ मुझे सब कुछ नहीं बताना चाहता। आयु वहाँ कुछ मिनट तक खड़ी वैसे ही आंसू बहाती रही। तो वहीं अब आरव और कबीर का एयरपोर्ट के लिए निकलने का टाइम हो चुका था। कबीर ने खड़े होकर कहा, अब हमें चलना चाहिए। आरव ने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, हाँ, एक बार आयु नीचे आ जाए, उससे मिल लूँ, फिर चलते हैं। कुछ ही देर में रोते हुए आयु की आंखें लाल हो गई थी। जैसे ही उसने आरफ के मुंह से ये सुना कि वो जाने से पहले आयु से मिलना चाहता है, तो आयु जल्दी से दौड़कर कमरे में चली गई और रूम अंदर से बंद कर लिया। कबीर ने घड़ी में टाइम देखते हुए आगे कहा, हाँ, लेकिन उन्हें टाइम लग सकता है क्योंकि वो अपनी मॉम से कॉल पर बात करने के लिए गई हैं। आपको पता है, लड़कियों की कॉल्स लंबी चलती हैं। वैसे भी थोड़ी ही देर की बात है, शाम तक वापस आ जाएंगे और आप उन्हें कॉल कर लीजिएगा। कबीर की बात पर सहमति जताते हुए आर्य बोला, हाँ डैड, आप मॉम की फ़िक्र मत कीजिए, उन्हें मैं देख लूँगा, आप बेफिक्र होकर जाइए। उन सब के कहने पर आरव मान गया था। वो कबीर के साथ जा तो रहा था, लेकिन बार बार उसकी आंखें दरवाजे की तरफ टिकी हुई थी। उसके दिल में यही उम्मीद थी कि आयु उससे मिलने के लिए आएगी। जब वो नहीं आई तो आरव थोड़ा मायूस भी हो गया था। आरव और कबीर वहाँ से जा चुके थे। उनके जाते ही साक्षी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज भी उतना ही प्यार करता है। हाँ, क्योंकि उन्हें सब कुछ याद है, लेकिन आयु की आंखों में मुझे इमोशंस नज़र नहीं आते। भाई ने उससे ज़बरदस्ती शादी की थी और वो किसी और को लाइक करती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आयु की आंखों में भाई के लिए इमोशंस नहीं दिखते, अयान ने जवाब दिया। आयु का बर्ताव और बाकी सब चीज़ें पूरी तरह बदल गई थी, और ये उसने कुछ टाइम में ही महसूस कर लिया था कि पिछले जन्म की आयु और इस आयु में काफ़ी फ़र्क था। आर्या ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आपकी बात भी सही है, लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं है और हमें उन्हें टाइम देना चाहिए। आप उनसे अभी मिले हो, वरना पहले तो वो डैड को बिल्कुल अजनबी समझती थी, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करती थी। उन्हें लगता था कि डैड पागल हैं जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ये तो शुक्र है जो वो मुझे मिली और मैंने उन्हें कुछ फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ दिखाई तो उन्हें यकीन हो गया। वो अपना टाइम ले रही हैं, पर देखना, डैड को एक्सेप्ट कर लेंगी वो। आर्य की बात सुनकर साक्षी ने उसका गाल खींचते हुए कहा, देखा आयान, कैसे अपनी मॉम की फेवर कर रहा है ये लड़का। साक्षी के इस तरह गाल खींचने पर आर्य ने मुंह बनाकर कहा, दर्द हो रहा है आंटी, प्लीज छोड़िए। साक्षी ने तुरंत उसका गाल छोड़ दिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, जाकर आयु को देखो, उसे काफी टाइम हो गया है ऊपर गए हुए। आरव उसे अपने साथ लेकर नहीं गया, कहीं इस वजह से तो वो अपसेट नहीं है। आर्य ने उनकी बात पर हामी भरी और तुरंत ऊपर चला गया। उसने आयु के कमरे का दरवाजा खटखटाया। आयु बाथरूम के अंदर थी और इस वक्त रोए जा रही थी। उसके रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए, इसलिए उसने शावर ऑन कर रखा था। शावर की आवाज़ सुनकर आर्य को लगा कि आयु नहा रही है, तो वो तुरंत वहाँ से हट गया। वहीं आयु इस वक्त शावर के नीचे खड़ी पागलों की तरह रोए जा रही थी। वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है? उसे आरव चाहिए था तो आकर डायरेक्ट मांग लेती, उसे ले जाती, पर उसने मेरे बच्चों को क्यों मारा? कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है? और मुझे सब कुछ याद क्यों नहीं आ जाता? सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, जबकि उसने मेरे साथ में इतना सब कुछ किया था। अगर मुझे याद नहीं है तो आरव को भी याद नहीं आना चाहिए था, आयु चिढ़ते हुए बोली। जब उसे ठंड लगने लगी तो वो बाथरूम से बाहर आ गई थी। आयु ने चेंज करके दूसरे कपड़े पहन लिए थे। आयु का रोना ज़रूर बंद हो गया था, लेकिन वो अभी भी मायूस थी। आयु को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। दोपहर को लंच के लिए आर्य उसे वापस बुलाने के लिए गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। आर्य ने बाहर से कहा, आप इतनी देर से अंदर क्या कर रही हैं मॉम? कब से आपके आने का वेट कर रहा हूँ। चलिए जल्दी बाहर आइए ताकि हम घूमने के लिए जा सके। साक्षी आंटी भी आपका ही वेट कर रही हैं। तुम लोग चले जाओ, मेरा मन नहीं है। मैं वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने वाली हूँ, उसके बाद मुझे कुछ देर सोना है। रात को आरव ने मुझे ठीक से सोने नहीं दिया, अचानक आयु के मुंह से निकला। फिर उसे एहसास हुआ कि उसने आर्य के सामने क्या कह दिया। वहीं बाहर खड़े आर्य के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने उसी अंदाज में कहा, तो आपने डैड की गलतियों को माफ कर दिया है, इट्स गुड कि आप आगे बढ़ रही हैं। आयु ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो आर्य वहां से चला गया। क्लासेस और सोने का बहाना बनाकर आयु रूम के अंदर तो थी, लेकिन कुछ ही देर में उसका दम घुटने लगा था। मुझे बाहर जाना है, आयु ने गहरी सांस लेकर कहा। फिर वो आगे बोली, अगर दरवाजे से बाहर गई और सबने देख लिया तो 100 सवाल पूछेंगे। आर्य और साक्षी दी भी मेरे साथ जाने की जिद करेंगी। लगता है मुझे अपने टेढ़ा दिमाग लगाना ही होगा। आयु जल्दी से बेड से उठी, उसने खिड़की की तरफ देखा तो वहाँ साइड में पाइप लगा हुआ था और वैसे भी कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। आयु को पहले भी अपने घर की खिड़की से बाहर निकलने की आदत थी तो वो उसी तरह छुपते छुपाते घर से बाहर चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ आरव कबीर के साथ मुंबई पहुंच चुका था। वहां आते ही उसने आयु के मोबाइल पर कॉल किया, लेकिन आयु जानबूझकर अपना मोबाइल घर पर छोड़कर गई थी, इस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाई। आरव को परेशान देखकर कबीर ने कहा, आर्य और अयान है उनके साथ में, आप ज्यादा मत सोचिए और आइए मेरे साथ। आरव ने कबीर की बात पर हामी भरी और अपने पुराने घर पर गया। वहां आते ही उसकी आंखें नम हो गई थी। आरव का बचपन और ज्यादातर जिंदगी वहां पर बीती थी, गार्डन एरिया में अपनी दादी गौरवी जी के साथ में बैठकर चाय पीना, तो कभी आर्य के साथ में टेंट हाउस में खेलना। अचानक आरव के दिमाग में वो सारी यादें ताजा हो गई थी। आज आर्य उसके साथ था, आयु भी थी, पर गौरवी जी नहीं थी। कबीर आरव की हालत समझ सकता था। उसने आरव का कंधा सहलाकर कहा, मेरा भी यहाँ आने का मन नहीं करता, पर महीने में एक बार मेंटेनेंस के लिए आना पड़ता था। मैंने आपको और दादी को बहुत मिस किया, उसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया और मैं इतना लाचार हूँ कि कुछ नहीं कर पा रहा। आरव ने कबीर की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, आयु आज मेरे साथ है पर आरिशा और दादी नहीं है। मैंने आर्य का बचपन मिस कर दिया, अपने उन दो बच्चों को खो दिया जो पैदा भी नहीं हुए थे। फिर अब बचा ही क्या है कबीर?
बची है उस औरत की बर्बादी जो आपके हाथों लिखी है सर। अपने मकसद को मत भूलिए, याद रखिए कि उसने आपको चोट पहुंचाई है, कबीर ने सख्त आवाज में कहा तो आरव ने उसकी बात पर हामी भरी। उसके बाद वो दोनों आरव के कमरे में गए। आरव का कमरा ज्यों का त्यों था, बस वहां मेंटेनेंस अच्छे से की गई थी। हर एक तस्वीर, हर एक याद कबीर ने संजो कर रखी थी, यहां तक कि उसके और आयु के कपड़े भी वैसे के वैसे ही थे। आरव वहां से कबीर के साथ सीक्रेट रूम में गया, जहां आरव की बनाई हुई बहुत सी तस्वीर थीं, कुछ आयु की थीं तो कुछ बच्चों की। उन यादों को देखकर आरव के मुंह से अचानक निकला, मुझे मिसेस खुराना को यहां अपने साथ लाना चाहिए था, शायद इन्हें देखने के बाद उसे कुछ तो याद आता। आप ही का घर है सर, जब मन करे आ जाइएगा, कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आरव ने फिर अपनी सेफ खोली, उसके हाथ में एक चिप थी। कहने को वो एक मामूली चिप थी, लेकिन एक छोटी सी चिप बड़े से बड़े शख्स को बर्बाद करने की ताकत रखती थी। वो चिप पिछले जन्म में भी आरव के बहुत काम आई थी, वरना एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन माफिया की दुनिया में कभी सर्वाइव नहीं कर पाता। उस चिप के अंदर माफिया से जुड़े हुए लोगों का काला चिट्ठा था। आरव ने उसे चिप को लिया और फिर कबीर से पूछा, कितनी कॉपी बनाई है तुमने इसकी? ज्यादा नहीं, बस 10,000 कॉपीज, क्योंकि इसके अंदर 1,000 लोगों का डेटा है, आगे दिक्कत ना हो इसलिए सबको सेपरेट कर दिया है। बहुत काम की चीज है तो ऐसे ही वेस्ट नहीं होने दे सकता, मेरे पास अपडेटेड डेटा भी है, कबीर ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। आरव के चेहरे पर भी ईविल स्माइल थी। उसे चिप को लेकर कबीर और आरव वापस घर के लिए निकल चुके थे। वहीं दूसरी तरफ आयु बाहर थी, वो एक गार्डन में बैठी हुई गुमसुम हालत में थी। बार बार उसके कानों में आरव के शब्द गूंज रहे थे कि जब आयु मरने वाली थी तब उसके ट्विंस होने वाले थे। अचानक वहां बारिश होने लगी, आयु के सीने में तेज दर्द उठा तो उसकी आंखें अपने आप बंद होने लगी। अचानक आयु के सामने कुछ दृश्य घूमने लगे जो काफी साफ थे, इतने साफ कि वो देख सकती थी कि उसके साथ में वहां कौन शख्स मौजूद है। आयु को कुछ ऐसा याद आया था जिसे देखने के बाद उसकी सांसें तेज होने लगी थी। एक बार फिर वो सब देखने के बाद बेहोश हो चुकी थी। एक तो रात का वक्त, ऊपर से बारिश के बीच पूरा बाग खाली हो चुका था। वहां आयु लावारिस की तरह बेंच पर बेहोश पड़ी थी। क्या लगता है आयु को क्या याद आया होगा? पाठ पढ़कर समीक्षा कर देना।